जरा सोचिए, एक ऐसा धर्म ग्रंथ जहां दुनिया को बनाने वाला ईश्वर एक शैतान के साथ बैठकर इंसानों की जिंदगी पर बाकायदा सट्टा लगाता है।
बिल्कुल।
मतलब दांव ये होता है कि एक बेहद नेक इंसान कब तक अपनी वफादारी कायम रख सकता है, और फिर इस दांव को जीतने के लिए उस इंसान का सारा धन छीन लिया जाता है, उसके घर को तबाह कर दिया जाता है, यहां तक कि उसके मासूम बच्चों को भी मार दिया जाता है।
सुनने में किसी खौफनाक थ्रिलर फिल्म की कहानी लगती है।
बिल्कुल। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये दुनिया के सबसे पुराने और पवित्र माने जाने वाले ग्रंथों में से एक बुक ऑफ जोब की कहानी है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे पास डॉक्टर जॉन वॉल्टन का एक बहुत ही प्रभावशाली व्याख्यान है जो बुक ऑफ जोब के 26वें सत्र पर आधारित है। हमारा मिशन ये समझना है कि इस ग्रंथ में ईश्वर का व्यवहार इतना कठोर, अजीब और क्रूर क्यों लगता है। मतलब क्या सच में ब्रह्मांड का रचयिता ऐसा ही है?
देखिए, इस सवाल ने सदियों से अनगिनत विद्वानों और आम पाठकों को परेशान किया है। जब हम इस कहानी को सरसरी तौर पर पढ़ते हैं तो जो तस्वीर उभरती है वो न केवल अजीब है बल्कि एक तरह से विनाशकारी है।
हाँ बिल्कुल, एक आम पाठक तो डर ही जाएगा।
सही कहा। लेकिन डॉक्टर वॉल्टन का शोध यहाँ एक बहुत ही अलग दिशा में जाता है। उनका मानना है कि अगर हमें ये सब क्रूर और अतार्किक लग रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम इस ग्रंथ को पढ़ने में एक बुनियादी गलती कर रहे हैं।
अच्छा, गलती कैसी?
हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये किताब ईश्वर का अपने ही बारे में दिया गया एक सीधा सीधा विवरण है, एक तरह की ऑटोबायोग्राफी है।
जबकि ऐसा नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें यह पूछना चाहिए कि ये विशेष कहानी ईश्वर के स्वभाव के बारे में हमें क्या दर्शाना चाहती है। तो हमें इस पूरे ग्रंथ को देखने का अपना नजरिया पूरी तरह से बदलना होगा।
लेकिन नजरिया बदलने से क्या मतलब है? मतलब जो शब्द पन्नों पर लिखे हैं, एक पाठक तो उसी को पढ़ेगा ना। कहानी की शुरुआत में ही स्वर्ग में एक भव्य सभा होती है जहां ईश्वर एक राजा की तरह बैठे हैं, और वो जो शैतान या चैलेंजर है वो आकर रिपोर्ट दे रहा है। अगर ये सच नहीं है तो फिर ये क्या है?
यहीं से इस ग्रंथ की असली परतें खुलना शुरू होती हैं। डॉक्टर वॉल्टन स्पष्ट करते हैं कि बुक ऑफ जॉब में ईश्वर को एक साहित्यिक पात्र यानी एक लिटरेरी कैरेक्टर के रूप में गढ़ा गया है।
एक कैरेक्टर
जैसे किसी कहानी में होते हैं।
हाँ ठीक वैसे ही
जैसे कहानी में जॉब एक कैरेक्टर है, उसके दोस्त पात्र हैं, और आगे चलकर जो रहस्यमय जीव आते हैं वे भी पात्र हैं। लेखक ने अपनी कहानी के गहरे दार्शनिक संदेश को हम तक पहुंचाने के लिए ईश्वर के चरित्र को एक साहित्यिक ढांचे में पिरोया है।
तो स्वर्ग की वो सभा बस एक ढांचा है?
बिल्कुल। जरा सोचिए, प्राचीन समय में लोगों के लिए सर्वोच्च सत्ता को समझने का सबसे आसान तरीका क्या था? एक राजा और उसके दरबार की कल्पना करना। इसलिए स्वर्ग की वो सभा केवल एक साहित्यिक शैली है, ये कोई वास्तविक सीसीटीवी फुटेज नहीं है।
एकदम सही, ये कोई फुटेज नहीं है कि स्वर्ग में सचमुच ऐसी बैठकें होती हैं जहां ईश्वर को ये जानने के लिए रिपोर्ट मांगनी पड़ती है कि दुनिया में क्या चल रहा है। ईश्वर अज्ञानी नहीं है।
ये बहुत ही दिलचस्प है। मतलब ये पूरा एक सेटअप है। इसे समझने के लिए मैं एक उपमा के बारे में सोच रही थी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी फिल्म में कोई बहुत ही नरम दिल वाला एक्टर एक बेहद सख्त और क्रूर तानाशाह प्रिंसिपल का रोल निभा रहा हो।
बहुत बढ़िया उपमा है,
है ना? वो एक्टर असल जिंदगी में वैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उस फिल्म की कहानी को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए उसे उस तानाशाह की भूमिका निभानी पड़ती है। तो क्या बुक ऑफ जॉब के लेखक ने भी ईश्वर के साथ कुछ ऐसा ही किया है? 100%। लेखक ने ईश्वर को एक विशिष्ट साहित्यिक भूमिका में इसलिए रखा है ताकि वो अपने पाठकों को एक बहुत बड़े दार्शनिक सफर पर ले जा सके। अगर वो शुरुआत में इस तरह का नाटक या मंच तैयार नहीं करता तो जो सवाल वो आगे उठाने वाला था उसकी जमीन ही तैयार नहीं हो पाती।
अच्छा, मैं ये बात समझ रही हूँ। लेकिन अगर हम ये मान लें कि स्वर्ग की वो सभा केवल एक कहानी का हिस्सा है, एक नाटकीय शुरुआत है, तो फिर इस कहानी को इतनी भयानक चरम सीमा तक क्यों ले जाया गया?
चरम सीमा से आपका मतलब जॉब के नुकसान से है?
हाँ, मेरा मतलब है अगर वो दांव सिर्फ एक लिटरेरी टूल था तो जॉब के परिवार को जिस बेरहमी से खत्म किया गया उसका क्या औचित्य है? कहानी का संदेश देने के लिए मासूम बच्चों को मार देना, क्या ये उस साहित्यिक ईश्वर को भी बहुत ज्यादा संवेदनहीन नहीं बनाता?
देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक और तीखा सवाल है जो हर संवेदनशील पाठक के मन में आता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि इस कहानी में ईश्वर असल में कोई दांव नहीं लगा रहे थे।
अच्छा
जी। और न ही उन्हें जॉब की वफादारी का परीक्षण करने की आवश्यकता थी। ईश्वर को जॉब के इरादों पर कोई शक नहीं था। ये पूरा घटनाक्रम ईश्वर के लिए नहीं बल्कि पाठकों के लिए रचा गया था, यानी हमारे लिए।
हमारे लिए पाठकों को ऐसा क्या समझाना था जिसके लिए जॉब को सब कुछ खोना पड़ा?
प्राचीन काल में और शायद आज भी लोगों के बीच एक बहुत गहरी धारणा है जिसे प्रतिशोध का सिद्धांत या रेट्रीब्यूशन प्रिंसिपल कहते हैं।
आसान भाषा में कहें तो
अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा, कर्मा जैसी कोई चीज।
बिल्कुल वही, जब कोई इंसान बहुत दुखी होता है तो समाज तुरंत ही मान लेता है कि उसने जरूर कोई बड़ा पाप किया होगा। लेखक को इस धारणा को पूरी तरह से ध्वस्त करना था,
तो इसलिए उसने जॉब को चुना।
हाँ, पाठकों के दिमाग में ये बात बिना किसी संदेह के स्थापित करनी थी कि जॉब की पीड़ा उसके किसी पाप का नतीजा नहीं है, वो पूरी तरह से निर्दोष है। मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्या ये साबित करने के लिए उसकी थोड़ी सी संपत्ति ले लेना काफी नहीं था? परिवार, स्वास्थ्य, सब कुछ क्यों छीन लिया गया?
क्योंकि अगर कहानी में थोड़ी सी भी गुंजाइश छोड़ दी जाती तो असली सवाल कभी सामने ही नहीं आता। अगर हम कल्पना करें कि जॉब की सिर्फ दौलत छिन जाती तो समाज क्या कहता?
लोग कहते कि कोई बात नहीं, कम से कम उसके पास उसका परिवार तो है।
एकदम सही। और अगर उसका स्वास्थ्य छिन जाता तो लोग कहते उसके पास अपना इलाज कराने के लिए पैसा तो है।
कष्टों का इस चरम स्तर तक जाना उस वैचारिक प्रयोग के लिए बहुत जरूरी था।
मतलब जब तक सब कुछ ना छिन जाए तब तक असली परीक्षा नहीं होती।
हाँ, असली दार्शनिक ज्ञान तभी बाहर आ सकता था जब एक इंसान के पास जीवन में उम्मीद की कोई भी किरण न बचे। ये एक्सट्रीम स्थिति केवल उस प्रश्न का मंच तैयार करने के लिए थी कि क्या इंसान बिना किसी लालच या भौतिक फायदे के सिर्फ निस्वार्थ भाव से ईश्वर से जुड़ सकता है। ये सच में बहुत गहरा विचार है। मतलब लेखक ने इन एक्सट्रीम स्थितियों का उपयोग सिर्फ एक दार्शनिक बिंदु को स्पष्ट करने के लिए किया है, न कि ये बताने के लिए कि ईश्वर असल जिंदगी में बच्चों के प्रति लापरवाह हैं।
जी बिल्कुल।
लेकिन फिर भी एक कहानी के अंदर भी इतनी एक्सट्रीम बातों को पचाना थोड़ा मुश्किल लगता है। क्या बाइबल में या उस दौर के साहित्य में कहीं और भी पाठकों को झकझोरने के लिए इस तरह की अतिशोक्ति का सहारा लिया गया है, या फिर यह सिर्फ बुक ऑफ जॉब को सही ठहराने का एक बहाना है?
ये कोई बहाना नहीं है। प्राचीन साहित्य में और खुद बाइबल में इस तरह के चरम साहित्यिक उपकरणों का भरपूर उपयोग हुआ है। डॉक्टर वॉल्टन इस बात को साबित करने के लिए नए नियम यानी न्यू टेस्टामेंट से यीशु के दृष्टांतों का उदाहरण देते हैं।
पैराबल्स।
हाँ, पैराबल्स। अगर हम इन दृष्टांतों को ध्यान से देखें तो वहां भी एक गहरा संदेश देने के लिए बहुत ही एक्सट्रीम स्थितियों का निर्माण किया गया है जिन्हें हम कभी शाब्दिक रूप से सच नहीं मानते।
क्या हम इन दृष्टांतों को थोड़ा विस्तार से समझ सकते हैं?
बिल्कुल। मैथ्यू 20 में मजदूरों और उनके वेतन का दृष्टांत है। इस कहानी में एक खेत का मालिक उन मजदूरों को भी दिन भर की पूरी मजदूरी देता है जिन्होंने दिन के आखिरी घंटे में आकर सिर्फ एक घंटा काम किया था।
एक घंटा काम और पूरे दिन की मजदूरी?
हाँ, और जिन्होंने सुबह से चिलचिलाती धूप में पसीना बहाया था उन्हें भी उतना ही पैसा मिलता है।
अगर आज की दुनिया में कोई कंपनी ऐसा करे तो पक्का मजदूर यूनियन हड़ताल कर देगी। ये तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से पूरी तरह अतार्किक है।
सही कहा, और यही इस दृष्टांत का मुख्य बिंदु है। अगर हम इसे शाब्दिक रूप से लें तो क्या हम ये मानेंगे कि स्वर्ग में लोगों के साथ इसी तरह का अनुचित व्यवहार होता है?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये अतिशोक्ति केवल ये समझाने के लिए है कि ईश्वर की कृपा इंसानों के लेन देन या हिसाब किताब के फॉर्मूले पर काम नहीं करती।
इसी तरह लूक 16 में एक चालाक प्रबंधक का दृष्टांत है।
उसमें क्या होता है? वहां मालिक अपने उस कर्मचारी की तारीफ करता है जिसने खुलेआम धोखाधड़ी की थी।
धोखाधड़ी? तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि ईश्वर चाहता है कि इंसान एक दूसरे के साथ धोखा करे या चालाकी से पेश आए? ये तो पूरी तरह से गलत संदेश होगा।
बिल्कुल गलत होगा। कहानी का उद्देश्य बेईमानी को बढ़ावा देना नहीं है बल्कि दुनियावी लोगों की उस दूरदर्शिता को दिखाना है जिसका इस्तेमाल आध्यात्मिक जीवन में किया जा सकता है। चलिए एक और भयानक उदाहरण देखते हैं।
अच्छा, बताइए।
मैथ्यू 18 में निर्दयी सेवक का दृष्टांत। जब एक सेवक अपने साथी का छोटा सा कर्ज माफ करने से मना कर देता है तो उसका मालिक क्रोधित होकर उसे तब तक के लिए यातना देने वालों के हवाले कर देता है जब तक वो अपना सारा कर्ज न चुका दे।
यातना यानी टॉर्चर।
हाँ, और कहानी के अंत में कहा गया है कि स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा।
ओह, ये तो बहुत ही डरावना है। मतलब क्या हम सच में ये मानते हैं कि ब्रह्मांड को चलाने वाला ईश्वर कहीं कोई टॉर्चर चेम्बर चलाता है जहां लोगों को शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं? अगर हम इसे शाब्दिक रूप से लें तो ईश्वर की छवि बहुत क्रूर हो जाती है।
और यहीं पर हमें यह समझना होता है कि दृष्टांत के प्रतीकात्मक संदेश और ईश्वर के वास्तविक स्वभाव के बीच एक बहुत बड़ा अंतर होता है। ये यातना की बात सिर्फ क्षमा न करने के गंभीर परिणामों को दर्शाने के लिए एक साहित्यिक अतिशयोक्ति है।
मुझे डॉक्टर वॉल्टन की स्रोत सामग्री से एक और बहुत ही दिलचस्प उदाहरण याद आ रहा है, ल्यूक 11 से, वो आधी रात के अनुरोध वाला दृष्टांत।
हाँ, वो भी एक बेहतरीन उदाहरण है,
जहाँ एक आदमी आधी रात को अपने पड़ोसी के पास रोटी मांगने जाता है क्योंकि उसके घर मेहमान आ गए हैं। अंदर से पड़ोसी कहता है, मुझे परेशान मत करो, दरवाजा बंद है और मैं अपने बच्चों के साथ सो रहा हूँ।
सही।
लेकिन जब वो आदमी बार बार दरवाजा खटखटाकर उसे तंग करता रहता है तो पड़ोसी आखिरकार उठकर उसे रोटी दे देता है।
इस दृष्टांत को लेकर जो विश्लेषण है वो यहाँ बहुत सटीक बैठता है। इस कहानी में जो पात्र ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी वो पड़ोसी, वो असल में मदद करने से कतरा रहा है। वो आलसी है और उसे काम करने के लिए बार बार तंग करना पड़ता है।
तो क्या हम लूक 11 को पढ़कर ये मान लेते हैं कि ईश्वर एक आलसी या चिड़चिड़े पड़ोसी हैं जिन्हें नींद से जगाना मुश्किल है?
बिल्कुल नहीं।
क्या हम ये मानते हैं कि ईश्वर हमारी तभी सुनेंगे जब हम उन्हें बार बार परेशान करेंगे?
नहीं ना।
हम जानते हैं कि ये सिर्फ लगातार प्रार्थना करने का महत्व समझाने के लिए एक कहानी है।
और यही वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जो हमें बुक ऑफ जॉब से जुड़ती है। जिस तरह हम उन दृष्टांतों में कहानी के पात्रों के शाब्दिक कार्यों को ईश्वर का स्वभाव नहीं मानते,
उसी तरह हमें बुक ऑफ जॉब में भी ये नहीं मानना चाहिए कि ईश्वर आसमान में बैठकर शर्तें लगाते हैं।
एकदम सही। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि वो लोगों की जिंदगियों को बिना वजह तबाह कर देते हैं। हमें हमेशा ये पूछना चाहिए कि लेखक उस पात्र के साथ क्या कर रहा है, न कि वो पात्र कहानी में शाब्दिक रूप से क्या कर रहा है।
यानी कहानी का असली संदेश उन घटनाओं में नहीं बल्कि उस पूरी साहित्यिक संरचना में छिपा है।
जी,
ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला विश्लेषण है। तो चलिए इसी समझ को लेकर बुक ऑफ जॉब के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम साहित्यिक उपकरणों की बात समझ भी लें तब भी इस ग्रंथ का अंत पाठकों को बहुत निराश करता है।
हाँ, अंतिम हिस्सा काफी चुनौतीपूर्ण है।
जॉब पूरी किताब में लगातार गुहार लगाता रहता है। वो बार बार कहता है कि उसे ईश्वर के सामने अपना पक्ष रखना है। वो एक तरह से ईश्वर पर मुकदमा करना चाहता है, लेकिन ईश्वर पूरे समय मौन रहते हैं। और जब अंत में ईश्वर बोलते भी हैं एक भयानक बवंडर के बीच से, तो ऐसा लगता है कि वो जॉब की किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं दे रहे। वो सिर्फ अपनी ताकत का दिखावा करते हैं। वो बहमोत और लेवियथान जैसे भयानक जीवों का वर्णन करते हैं।
बिल्कुल।
तो मेरा सवाल ये है कि यदि ये सब पाठकों को सिखाने के लिए गढ़ी गई एक कहानी है, तो फिर अंत में ईश्वर जवाब क्यों नहीं देते? ऐसा क्यों लगता है कि वो जॉब को डरा कर चुप करा रहे हैं?
ये इस पूरे ग्रंथ का सबसे जटिल और विचारणीय पहलू है। डॉक्टर वॉल्टन स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर इस पूरी कहानी में अनुत्तरदायी है, और इसका एक बहुत गहरा कारण है। जरा सोचिए, अगर अंत में ईश्वर प्रकट होते और जॉब को सब कुछ समझा देते,
मतलब अगर वो पूरा प्लान बता देते।
हाँ, अगर वो कहते, सुनो जॉब, स्वर्ग में एक सभा हुई थी, शैतान ने चुनौती दी थी, और ये साबित करने के लिए कि तुम स्वार्थी नहीं हो, मुझे ये सब करना पड़ा। अगर ईश्वर ऐसा स्पष्टीकरण दे देते तो क्या होता?
तो जॉब को शांति मिल जाती। उसे पता चल जाता कि उसके साथ जो हुआ उसके पीछे एक ठोस कारण था।
हाँ, जॉब को शायद शांति मिल जाती, लेकिन इस पूरी किताब का जो मूल संदेश था वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता।
संदेश कैसे नष्ट हो जाता? ये बात थोड़ी उलझी हुई लग रही है।
देखिए, क्योंकि अगर ईश्वर जवाब दे देते तो इसका मतलब ये होता कि जॉब का मुकदमा करना सही था।
अच्छा।
इसका मतलब होता कि ईश्वर इंसानों के प्रति जवाबदेह हैं, और जब इंसान सवाल पूछेगा तो ईश्वर को अपनी सफाई देनी पड़ेगी। ये ग्रंथ ये स्थापित करना चाहता है कि ब्रह्मांड के साथ और ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता मुकदमेबाजी या बहस पर आधारित नहीं हो सकता।
मतलब हम भगवान को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते।
बिल्कुल। जब हम पर कोई भयानक विपत्ति आती है तो हर चीज का स्पष्टीकरण मांगना समाधान का रास्ता नहीं है।
तो क्या हम ये मान ले कि इस पूरी लंबी किताब का सार बस इतना ही है कि मैं ईश्वर हूँ, मेरी ताकत बहुत बड़ी है और तुम एक छोटे से इंसान हो, इसलिए मुझसे सवाल मत पूछो और चुपचाप बैठो?
ऐसा लग सकता है, लेकिन
क्योंकि जब ईश्वर बवंडर से बोलते हैं तो उनका लहजा बहुत आक्रामक लगता है। ये तो ऐसा हुआ कि कोई इंसान दर्द में तड़प रहा है और उसे सांत्वना देने के बजाय डराया जा रहा है।
मैं समझता हूँ कि अगर हम इसे आधुनिक नजरिए से देखें तो ये डराने वाला लगता है, लेकिन डॉक्टर वॉल्टन समझाते हैं कि यहाँ लेखक का उद्देश्य पाठकों को डराकर पैरों में झुकाना या गिड़गिड़ाने पर मजबूर करना नहीं है।
तो फिर क्या उद्देश्य है?
अगर हम बाइबल के ही दूसरे हिस्से जैसे भजन संहिता को देखें तो वहां ईश्वर बहुत सुलभ हैं, जहां लोग अपनी हर परेशानी उनके सामने रोते हैं। बुक ऑफ जॉब में ईश्वर का ये रूप केवल ये दिखाने का एक साहित्यिक तरीका है कि ईश्वर अव्याख्य है।
अव्याख्य, इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझाएंगे?
इसका सीधा सा मतलब है कि ईश्वर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसे इंसान अपनी मुट्ठी में कैद कर सके या अपने हिसाब से चला सके, यानी वो इरिड्यूसिबल हैं। ईश्वर को किसी गणितीय समीकरण या इंसान के बनाए छोटे से डिब्बे में फिट नहीं किया जा सकता।
हम अक्सर चाहते हैं कि ब्रह्मांड एक वेंडिंग मशीन की तरह काम करे, जहां हम अच्छे कर्मों का सिक्का डाले और बदले में सुख शांति बाहर आ जाए।
बहुत ही सटीक उदाहरण है, लेकिन ईश्वर का भाषण ये दिखाता है कि ये ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं अधिक विशाल, जटिल और जंगली है। बेहमोत और लेवियाथान का जिक्र यही दिखाता है कि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें इंसान न तो समझ सकता है और न ही नियंत्रित कर सकता है,
लेकिन फिर भी ईश्वर के पास उन सब के लिए एक जगह है।
बिल्कुल,
यानी ईश्वर को हमारे द्वारा सही ठहराए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपनी असीम बुद्धिमत्ता से इस दुनिया की रचना की है और वो ब्रह्मांड हमारे सीमित न्याय के तराजू पर नहीं तौला जा सकता।
एकदम सही, और हमें उसी व्यापक बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना चाहिए बजाय इसके कि हम हर चीज के पीछे का कारण जानने की जिद करें। यही इस ग्रंथ की असली थियोलॉजी है।
ये विश्लेषण सच में हमारी पुरानी धारणाओं को तोड़कर एक नई समझ देता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमारे लिए सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये है कि जब हम प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें उनके साहित्यिक संदर्भ को समझे बिना सीधे निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिए। हम अक्सर कहानी कहने के तरीके को शाब्दिक सच मान लेते हैं और उससे ईश्वर की एक विकृत छवि बना लेते हैं।
हाँ, बिल्कुल।
आज के इस दौर में जब हमारे चारों तरफ सूचनाओं का अंबार है तो इस ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग यही है कि हम जानकारी के भारी बोझ के बीच सही कॉन्टेक्स्ट को पहचानना सीखें।
ये बहुत ही शानदार निष्कर्ष है। संदर्भ को समझना ही किसी भी जानकारी को ज्ञान में बदलने की पहली सीढ़ी है। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो इस स्रोत सामग्री से ही निकला है, लेकिन ये हमें अपनी आज की जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया देता है।
जरूर, वो विचार क्या है?
देखिए, अगर हम ये समझ चुके हैं कि बुक ऑफ जॉब एक साहित्यिक रचना है जो हमें ये सिखाती है कि ईश्वर का न्याय और ब्रह्मांड के कामकाज को हम अपनी सीमित समझ से नहीं आंक सकते, तो जरा हम अपने असल जीवन को देखें। आज की दुनिया में जब हमारे जीवन में कोई व्यक्तिगत त्रासदी आती है, कोई गंभीर बीमारी दस्तक देती है या अप्रत्याशित कठिनाइयां आती हैं, तो क्या हम भी जाने अनजाने में जॉब की तरह ही व्यवहार नहीं करते?
अरे हाँ।
क्या हम भी ब्रह्मांड के खिलाफ एक अदालत लगाने की कोशिश नहीं करते, जहां हम खुद को जज की कुर्सी पे बिठाकर ये तय करना चाहते हैं कि हमारे साथ जो हुआ वो उचित था या अनुचित?
ये सच में हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। हम हमेशा शिकायत करते हैं।
शायद जीवन के हर तूफान में, हर विपत्ति में क्यों का जवाब ढूंढने की हमारी जो जिद है वो हमें और ज्यादा दुखी करती है। शायद अदालत लगाने के बजाय हमें उस व्यापक और अदृश्य बुद्धिमत्ता को स्वीकार करने की जरूरत है जिसे हम अपनी छोटी सी दृष्टि से कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे।
शक्तिशाली विचार है जिसके साथ हम आज इस चर्चा को विराम देना चाहेंगे। जब जीवन में कुछ ऐसा हो जो समझ से परे लगे, तो क्या हम जवाब मांगते हुए मुकदमा लड़ेंगे या उस अदृश्य बुद्धिमत्ता पर भरोसा करेंगे? आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। सुनते रहिए, नई चीजों पर विचार करते रहिए और अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए।